मैं दीपक झा किताब के पन्नों से कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम में हम सुन रहे हैं प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम की लोकप्रिय कहानी स्टिंच ऑफ किरोसिन, यानी मिट्टी के तेल की बदबू का नाट्य रूपांतरण। पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस तरह गुलेरी और माने चंबा में लगे मेले में एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। धीरे धीरे ये पहली मुलाकात कई मुलाकातों में बदल जाती है और दोनों प्यार करने वाले शादी के बंधन में बंध जाते हैं। लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब शादी के 6 साल बाद भी गुलेरी माँ नहीं बन पाती और आखिरकार अब उसकी सास राह देख रही है कि कब गुलेरी हर साल की तरह इस बार भी फसल कटने के समय अपने पिता के घर जाए और वो अपने बेटे की शादी किसी और से करा दे। अपनी माँ की इस जिद के कारण मानिक बेहद तनाव में है। चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कहानी में आगे क्या होता है।
क्या हुआ गुलेरी, तुम यहाँ इस तरह चुपचाप अकेले क्यों बैठी हो?
अब तो जिंदगी में लगता है कि उदासी के पल रह गए हैं। मैं इस घर को एक वारिस नहीं दे पाई, सारी खुशियाँ मैंने ही बर्बाद की हैं।
ये तुम्हें क्या हो गया है? हम दोनों का साथ एक दूसरे के लिए काफी है। गुलेरी, तुम माँ की बात का ध्यान मत दिया करो, तुम तो जानती हो उनके व्यवहार को।
पर ना जाने क्यों मन में एक अजीब सी हलचल है, कुछ अनहोनी ना हो जाए।
तुम ये ऊटपटांग की बातें सोचना बंद करो। देखो, जब तुम उदास होती हो तो मेरा मन भी नहीं लगता।
ओहो, चलो छोड़ो इन सारी बातों को। और हाँ, पता है कल क्या है? हर साल की तरह इस बार भी फसल कटने के बाद मैं अपने मायके जाऊंगी। कल हर साल की तरह मेरे पिताजी का नौकर नीतू मुझे लेने आ रहा है और इस साल तो मेरी दो पुरानी सहेलियाँ भी आएंगी।
हाँ, मुझे पता है।
अरे गुलेरी, देख कौन है।
जी माँ जी, अभी देखती हूँ। अरे नीतू काका, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी।
हाँ बिटुआ, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, घर पर तुम्हारे पिताजी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
ठीक है काका, मैं अपना सामान लेके आती हूँ। मानिक, नीतू काका आ गए, अब मैं चलती हूँ।
मैं तुम्हारा सामान लेकर आता हूँ।
मुझे तुम्हारी वहाँ याद आएगी। तुमसे दूर जाना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पिताजी से मिलना भी जरूरी है। तुम वहाँ मुझसे मिलने आओगे ना?
तुम बैठो,
मैं तुम्हारी बांसुरी ले जा रही हूँ। जितने दिन मैं चंबा में रहूंगी ये तुम्हारी कमी पूरी करेगी।
गुलेरी।
हाँ बोलो।
कुछ नहीं, कुछ नहीं।
मानिक के लाख मना करने के बाद भी उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। अब मानिक की शादी को काफी समय बीत चुका है, लेकिन उसे गुलेरी की बहुत याद आती है और वह काफी उदास भी रहता है। सुबह का समय है, चंबा से उसका दोस्त भवानी उससे मिलने आता है। जानते हैं उनके बीच में क्या बातचीत होती है?
और मानिक मेरे दोस्त, कैसे हो?
बस जिंदगी कट रही है।
मानिक, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ।
क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है?
नहीं मेरे दोस्त, कुछ भी ठीक नहीं। गुलेरी इस दुनिया में नहीं रही। जब उसने तुम्हारी दूसरी शादी का समाचार सुना तो उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली।
क्या?
गुलेरी की मौत ने मानिक को गहरा सदमा पहुंचाया। अब मानिक के जीवन में निराशा ही उसकी संगिनी बन गई है। दिन गुजर गए, उसकी दूसरी पत्नी ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। मानिक की माँ और नई पत्नी को पूरा विश्वास है कि अब बच्चा निराश मानिक के जीवन को एक बार फिर खुशियों से भर देगा। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं।
ले ले ले, मिला छोटा मानिक। चुप हो जा बेटा। मानिक, ये ले अपने बच्चे को, संभाल, ले गोद में इसको।
नहीं, ले जाओ उस बच्चे को उठाकर यहाँ से। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा, इसके शरीर से मिट्टी तेल की बदबू आ रही है।
Yeah.
थी गुलेरी और मानिक की प्रेम कहानी। क्या यही था गुलेरी और मानिक का अंत? क्या इसी तरह समाज की रूढ़िवादी विचारधारा का शिकार बनते रहेंगे जाने कितने और गुलेरी मानिक? यह समाज का एक पहलू है और ऐसे न जाने कितने ही पहलू हैं जिनसे समाज जान कर भी अनजान है।
ये थी लेखिका अमृता प्रीतम की लिखी कहानी। एक महिला के मां ना बन पाने की क्या यही कीमत चुकानी पड़ सकती है? इस बारे में अपनी राय देने के लिए दबाएं नंबर 3। अगली कड़ी में हम आपको सुनाएंगे एक प्रसिद्ध लेखक की एक और लोकप्रिय कहानी का नाट्य रूपांतरण। धन्यवाद।